زمانے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی علام ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الضلال والجہال. جی موضوع ہمارا دو دن چلے گا اور دو دن ہم گفتگو کریں گے کہ کربلا کا شان نزول کیا ہے, فضائے نزول کیا ہے اور جو نزول کیا ہے. اگر یہ سمجھ آ جائے تو معاملات حل ہیں, اگر یہ نہ سمجھ آئے تو معاملات حل نہیں ہوتے. وہ کڑیاں نہیں جڑتی جو کڑیاں جوڑی جاتی ہیں, وہ کڑیاں اگر جڑ جائیں تو معاملہ حل ہوگا, وگرنہ ایک تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. اگر آپ کو سنتے ہوئے کربلا کو, قیام امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں جی, قرآن کریم نے کہا سورہ آراف کی آیت نمبر 128 کہ والعاقبت للمتقین, کہ بہترین انجام متقین کا ہے, بہترین انجام متقین کا ہے. چاہے وہ ظاہری طور پہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں لیکن بہترین انجام ہر تاریخ میں متقین کا ہے اگر پوری شرائط کے ساتھ ہے. جہاں شرائط کم ہو جائیں وہاں ناکامی ملے گی. ایمانی شرائط کم ہو جائیں تو جنگ احد کی مثال لے لیں, ناکامی ملے گی. جہاں قرآن کریم نے کہا کہ ان تصبروا وتتقوا, یہ کہ تم صبر اختیار کرو, تقوی اختیار کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی, جس طرح تم نے جنگ بدر میں کیا تھا. شروعاتی طور پہ اگر آپ معائنہ کریں تو جنگ احد میں بھی خداوند عالم کی مدد حاصل تھی, غالب تھے مسلمان. جوں ہی کمزور ہوئے, جوں ہی رسول خدا کے حکم میں نافرمانی کی, ایمانی شرائط کم ہوئی کامیابی پیچھے چلتی گئی, ناکامی آتی گئی ان کے پاس. ٹھیک, جب ہم کہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام ہم شکل قرآن ہیں, یہ جو آپ پڑھتے ہیں زیارت میں السلام علیک یا شریک القرآن, سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ, آپ قرآن کے شریک ہو, ہم شکل قرآن ہو, قرآن عینی ہو. عینی کیا؟ قرآن کو ان کے بغیر سمجھنا ناممکنات میں سے. ٹھیک, قرآن کو سمجھنے کے لیے تین چیزیں آپ کے پاس ہونی ضروری ہیں, شان نزول, فضائے نزول, جو نزول. یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں, اسی طرح آئمہ علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے بھی یہ تین چیزیں آپ کے پاس آپ کو معلوم ہونی چاہیے, شان نزول, فضائے نزول اور جو نزول. یہ تین چیزیں ہوں گی تو ہمیں کربلا, قیام امام حسین, نہضت حسینی, یا امام علی علیہ السلام کا کردار, یا امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار سمجھ آئے گا. سب سے پہلے آیت کا ہمیں شان نزول معلوم ہونا چاہیے کہ شان نزول کیا ہے. شان نزول وہ سبب جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی, یا وہ سبب پہلے ہے آیت سے پہلے ہے یا آیت کے بعد, بس اس سبب کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی کہ غدیر خم کے موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کے بازو کو پکڑ کے بلند کر کے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ سبب بنا کے آیت نازل ہو, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بس شان نزول آیت کا کیا کرے گا, آیت کے نزول کے سبب کو بیان کرے کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, پہلی چیز. دوسری چیز, صرف شان نزول کا ہونا لازمی نہیں, دوسری چیز کا بھی ہونا لازمی ہے, وہ ہے فضائے نزول. فضائے نزول یعنی کیا, کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے, سورہ کی فضا کیا تھی, مکی فضا تھی یا مدنی فضا تھی. مکی فضا اور ہے, مدنی فضا اور ہے. مثال کے طور پہ سورہ فرقان, سورہ فرقان مکی سورہ ہے. اگر آپ کو فضائے نزول معلوم نہیں, آپ ترجمہ بھی غلط کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ میں آیت پڑھتا ہوں، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے رسول کافروں کی اطاعت نہ کرنا اور ان سے بڑا جہاد کرنا۔ اب جی جہاد، جو جہاد اصغر ہے وہ واجب کہاں ہوا؟ وہ مدینے میں واجب ہوا۔ جہاد اصغر واجب کہاں ہوا؟ مدینے میں۔ یہاں مکے میں سورہ فرقان جو مکی آیت ہے وہاں کہا جا رہا ہے جاہدم بھی جہادن کبیرہ۔ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا کہ آپ ان سے جہاد اصغر کرو، جنگ لڑو، کیونکہ جنگ تو واجب ہوئی مدینے میں، جنگ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے لڑی ہے، جب غالب ہوئے، جب پاور میں آئے، جب قوت میں آئے تب جنگ لڑی۔ یہاں حالات یہ تھے کہ مغلوب تھے مکے میں، مکے میں مغلوب تھے، طاقتور نہیں تھے، تو آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے؟ اس جہاد سے مراد علمی جہاد ہے، جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، آپ ان سے بڑا علمی جہاد کرو، علم پہنچاؤ، نہ کہ جنگ لڑو تلوار اٹھاؤ۔ یہ فضائے نزول ہے۔ فضائے نزول یعنی کیا؟ کہ سورہ فرقان مکی ہے، بس جہاد اصغر مدینے میں واجب ہوا، جنگ کہاں واجب ہوئی؟ مدینے میں واجب ہوئی۔ ترجمہ بھی آپ کا اسی فضائے نزول کے تحت آپ کو سمجھ آئے گا کہ فضائے نزول جو ہی آپ کی حل ہوئی، ترجمہ اور تفسیر آپ کی حل ہو جائے گی۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، جو نزول۔ جو نزول یعنی قرآن کریم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 سال کا عرصہ لگا۔ اور قرآن کریم نے کس جہالت کو ختم کیا؟ وہ جہالت شرک والی تھی۔ وہ جہالت کون سی تھی؟ شرک والی تھی۔ شرک والی جہالت کو ختم کیا قرآن کریم نے، جہالت کو ختم کر کے عالم اور عاقل اور عادل بنایا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ رسول انہیں تعلیم بھی دیتا ہے کتاب اور حکمت کی، اور ان کو پاک بھی کرتا ہے، عاقل بھی بناتا ہے، عادل بھی بناتا ہے، تزکیہ بھی کرتا ہے۔ بس اسلام کہاں سے شروع ہوا؟ اسلام مکے سے شروع ہوا، بعثت مکے سے شروع ہوئی۔ غالب کہاں پہ آیا؟ مدینے میں آیا۔ مدینے سے غالب ہو کے فتح مکہ کی صورت میں، اور پھر مغلوب ہو گئے روم اور فارس مغلوب ہو گئے، اور یہ اسلام پوری دنیا تک گیا۔ بس جو نزول آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو نزول جو قرآن کریم کی ہے، اسی طرح کربلا اور قیام امام حسین اور نہضت امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی یہ تین چیزیں سمجھنا لازمی ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں سمجھ نہیں آتی آپ کو، آپ ربط نہیں ڈھونڈ پائیں گے کربلا میں، بے ربط سی لگے گی آپ کو کربلا، نہضت حسینی آپ کو بے ربط سی لگے گی۔ کیا ہے شان نزول کربلا کا؟ کربلا کا شان نزول کربلا ہی ہے، نہضت حسینی کا شان نزول کربلا ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں، جناب ام سلمہ سے گفتگو ہو رہی ہے امام حسین کی، جب مدینے میں ہے امام حسین علیہ السلام، جب تیاری کر رہے ہیں سفر کے لیے، تو جناب ام سلمہ بتا رہی ہیں کہ رسول خدا نے بتایا تھا کہ آپ کربلا میں ذبح کیے جاؤ گے، قتل کیے جاؤ گے۔ رسول خدا نے بتا دیا تھا، یہ خدا کا حکم تھا کہ آپ نے سر کٹانا ہے۔ یہ ایک نقطہ غور سے سنیے گا، ہماری مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ امام حسین حج کے لیے نکلے تھے، ہماری اصول کافی فقہی روایات یہ کہتی ہیں کہ امام حسین عمرہ مفردہ کے لیے نکلے تھے۔ امام کو معلوم تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے، امام کو علم تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ دو دفعہ جو قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے تو بیان کیا کہ میں جا رہا ہوں اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے۔ بس یہ ہدف تھا۔ شان نزول کیا ہوا کربلا کا؟ نہضت حسینی کا شان نزول کربلا ہے کہ اس سرزمین پہ ہم نے سر کٹانا ہے، وہاں ہم نے قربانی دینی ہے، وہاں ہم نے اپنی قربانی کو پیش کرنا ہے۔ بس یہ شان نزول ہے۔ جنگ صفین کے موقع پہ امام علی علیہ السلام جب پلٹ رہے تھے، جنگ صفین میں جب امام پلٹ رہے تھے تو کربلا سے گزرے، करबला से गुजरे और करबला में उतरे और एक इस्तराहत की, लेटे उस ज़मीन पे, एहतमाम दो रकत नमाज पढ़ी। सहाबा ने पूछा कि ये कौन सी जगह है जिसको आप बड़ी बड़ा एहतमाम या अहमियत दे रहे हैं माँ? कहा कि हा होना मसार उशाकुल्ला, ये है वो ज़मीन जो आशिका ने खुदा की। शान नज़ूल क्या हुआ करबला? नहजत इमाम हुसैन का, क्याम इमाम हुसैन का करबला, कि करबला में हमने सर कटाने हैं, करबला में हमने सर कटाने हैं, करबला में हमने कुर्बानी देनी है, ऐसी जगह पे कुर्बान होना है। ये प्रोग्रामिंग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की थी, जिस तरह प्रोग्रामिंग यजीदियत कर रही थी इसी तरह 100% प्रोग्रामिंग कौन कर रहा था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और इमाम जुड़े हुए थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बस ये जहन में रखिएगा कि ये पूरी तरह प्रोग्रामिंग थी। और जीती कौन है? हुसैनियत जीती। कामयाब हुई कौन है? हुसैनियत। कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी कामयाबी का ऐलान शाम के दरबार में किया। कहा कि पूछा गया कि कौन जीता? कहा कि हम जीते हैं। कहा कि कैदी तो आप बन के आए हैं। कहा कि ज़रा आज़ान का वक्त आने दो, नमाज का वक्त आने दो। आज़ान जब मुअज़्ज़िन देगा, अकामत जब मुअज़्ज़िन कहेगा, वहाँ देखिएगा हमारी मेहनत आश्कार होगी कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कौन कहे, वही मुअज़्ज़िन कहेगा। बस हमारी मेहनत यही थी। बस शान नज़ूल क्या है नहजत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, क्याम इमाम हुसैन करबला, पूरी प्रोग्रामिंग, पूरी प्रोग्रामिंग 100% प्रोग्रामिंग। भला ये जो जनाब ज़ैनब को कहा कि ए मेरी बहना मुझे नमाज शब के नवाफिल में याद करना, ये क्या है? इमाम मामूम से कह रहा है। इमाम को क्या ज़रूरत कि मामूम उसके लिए दुआ करे? इमाम है ज़ैनब सलाम अलैहा के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये प्रोग्रामिंग दे रहे हैं कि एक हर कठिन मौके पे तुमने नमाज शब को रिहा नहीं करना। भूखी हो, प्यासी हो, जितना भी कठिन सफर आए, तुमने नमाज शब को रिहा नहीं करना मेरी बहना। ला तनसीनी फिर नाफिला, भला देखें कि कूफे के बाजार में एक कूफी औरत को रहम आया, एक बच्ची पे, सैयदानी पे रहम आया और उसने खाना दिया। इन अम्मती तकूल, हमारी पुफी जान ने कहा है, हमारी पुफी जान ने फतवा दिया है कि सदका लेना हम पे हराम। यानी क्या फतवा? इमाम मौजूद हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हो, तो क्या ज़ैनब सलाम अलैहा फतवा दे सकती हैं? नहीं दे सकती। ये फतवा यानी हमने बचा के, इमाम को बचा के शाम के दरबार में पहुंचाना है और शाम के दरबार में खुतबा देना है और बताना है कि मैं मक्के का बेटा हूं, मैं मिना का बेटा हूं, मैं जमजम का बेटा हूं, मैं सफा का बेटा हूं। बचा के हमने ले जाना है वहां तक। और शबे आशूर आपको ये चीज वाजे हो रही है कि ज़ुहैर हबीब इब्ने मज़ाहिर ने पूछा, जब इमाम सज्जाद शबे आशूर खेमे से निकले, कहा कि इमाम ये भी कत्ल किए जाएंगे, ये भी शहीद किए जाएंगे। कहा नहीं, ये 8 इमामों के बाप हैं, इन्हें हमने कत्ल होने नहीं देना। बस ये पूरी एक प्रोग्रामिंग है। ये पूरी प्रोग्रामिंग के तहत बस शान नज़ूल तक पहुंचना जरूरी था। शान नज़ूल क्या है? करबला। नहजत इमाम हुसैन का शान नज़ूल करबला है। नहजत इमाम हुसैन का फ़ज़ाए नज़ूल क्या है? फ़ज़ाए नज़ूल ये है कि इमाम ने देखा कि हाकिम शाम यजीद जो काम कर रहा है वो सिर्फ फिस्क नहीं है, जुल्म नहीं है, बल्कि दीन को असीर बना रहा है। वो सिर्फ फासिक नहीं है, जालिम नहीं है, वो दीन को असीर बना रहा है। वो हर रोज मिंबर पे आके कहता है लाएबत बनू हाशिम, कि बनू हाशिम ने नबूवत का ढोंग रचा। ये हुकूमत करने का ढोंग था नबूवत का ऐलान करके, रिसालत का ऐलान करके। ना कोई वही नाजिल हुई है, ना कोई फरिश्ता आया है, ना कोई किताब आई। ये फ़ज़ाए नुज़ूल है कि इमाम ने मदीने में वलीद इब्न उतबा के दरबार में बताया क्या? इन्ना अहल बैत नबूवा, हम अहल बैत नबूवत। ये शान फ़ज़ाए नुज़ूल है, हम अहल बैत नबूवत हैं, हम मादन रसाला हैं, हम मलाइका के उतरने की जगह हैं कि हमारे पास मलाइका आते जाते हैं। वह महबत रहमा, हम हैं रहमत उतरने की जगह, खुदा ने हमारे साथ शुरुआत की है, हमारे ज़रिए इस आलम का इख्तिताम करेगा। ये और दूसरा अब का यजीद रजुलुन शारिबुल खम्र, यजीद शराब खोर है, मोहतरम जानों का कातिल है, ऐलानिया तौर पे फिस्क करता है और दीन को असीर बनाता है, दीन को असीर बनाता है। बस फजाए नुजूल क्या है करबला की, इमाम चाहते थे कि जो हकीकी मुफस्सर है कुरान का, मुआशरे को उससे दूर किया गया, जाली मुफस्सर मुफस्सर कुरान के आके बैठे हैं। जाहिलियत नई शक्ल में आ गई, कुरान से पहले जाहिलियत शिर्क के लिबादे में थी। किस अब्दुल्लाह का मुकाबला किसके साथ था, अब्दवद के साथ था, वद बुत का नाम, बुत वद का बंदा अब्दुल्लाह अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले। बस जाहिलियत किस लिबादे में थी, शिर्क के लिबादे में। यह इतनी खतरनाक नहीं है, जो जाहिलियत एक रूप इख्तियार कर गई थी वो ये थी कि दीन के लिबादे में थी जाहिलियत। मुनाफिक मोमिनीन कहलाने लगे थे, मुनाफिक लोग क्या कहलाने लगे थे, हाकिम शाम मुआविया उसका कारोबार क्या था, अबू रेहान बेरूनी कहते हैं कि कारोबार था बुत बनाना और महंगे दामों में हिंदुस्तान भेजना, कश्ती के जरिए भेजे जाते थे बुत और बैतुल माल को पुर किया जाता था। एक हाकिम शाम, एक हाकिम इस्लामी, एक जो खुद को खलीफा कह रहा हो, खलीफतुल मुसलमीन, नमाज जुमा भी पढ़ा रहा हो, नमाज जमात भी पढ़ा रहा हो और बुतों का कारोबार भी कर रहा हो, ये जाहिलियत खतरनाक तरीन जाहिलियत, ये दीनी लिबादे में जाहिलियत थी। ऐसी जाहिलियत थी कि नमाज जुमा पढ़ाने वाला बुतों का कारोबार कर रहा था। कैसे मुमकिन है कि खलीफतुल मुसलमीन शिर्क को तरवीज करे, खलीफतुल मुसलमीन का काम क्या है, तो करना, तौहीद को राइज करना। जाहिलियत किस लिबादे में थी, दीनी लिबादे में थी। इसकी हम तफसील से हम बयान करेंगे कि जाहिलियत कैसे जिनके अंदर रसूल खुदा ने मकतब डाला और शिर्क वाली जाहिलियत को खत्म किया, दोबारा कैसे वो जाहिलियत की तरफ पलटे। ठीक, बस फजाए नुजूल क्या है करबला की, फजाए नुजूल है कि हम अहल बैत नबूवत हैं, हम मादिन रसाला हैं, हम मुख्तलफ अल मलाइका हैं, हमसे हम वो जगह हैं जहां रहमत उतरती है, हमसे शुरुआत हुई है, हमसे इख्तिताम हो। और यजीद जो है दीन को असीर बनाने वाला है, दीन को असीर यानी जाहिलियत किस लिबादे में आ रही है, दीनी लिबादे में आ रही है, दीनी लिबादे में आ रही है। तीसरी चीज़ जव नज़ूल, कुरान करीम का जव नज़ूल 23 साल का अरसा है कि 13 साल मक्के के हैं और 10 साल मदीने के हैं, और 10 साल जो मदीने के हैं वहाँ हुकूमत इस्लामी हुई, गलबा आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी चाहते थे कि 4 इलाके रोशन हो जाएं, 4 इलाके अगर रोशन हो जाएं, अगर आज किसी बड़े शहर में वाशिंगटन हो या न्यूयॉर्क हो, उसमें कोई धमाका हो जाए, पूरी दुनिया का मीडिया उसे कवरेज देगा, उसकी बात करेगा, ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी। इसी तरह इमाम हुसैन भी चाहते थे कि मैं मदीने को भी आगाह कर दूं, मक्के को भी आगाह कर दूं, और मक्के के हाजियों को भी जो दुनिया भर से आए हैं उन्हें बताऊं कि मेरा मकसद क्या है, और उसके बाद हज अंजाम ना दूं, उम्रा मुफरदा करके निकल जाऊं, बताऊं कि दीन खतरे में है, दीन खतरे में है, हज खतरे में है। अशहदु अन्नका कद अकमत सलात आतई तकत, मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज कायम की, ज़क़़त अदा की। ये बतौर मिसाल है, मैं गवाही देता हूँ कि आपने हज को ज़िंदा किया, आपने रोज़े को ज़िंदा किया, हर नेक अमल को आपने इमाम हुसैन ज़िंदा किया। सिर्फ नमाज और ज़क़़त नहीं, ये बतौर मिसाल है। अशहदु अन्नका कद अकमत सलात, रूह नमाज को ज़िंदा किया आपने, रूह हज को, रूह हज क्या है, रूह हज 2 चीज़ें हैं, पहला आज़ान मिनल्लाह है, सूरह तौबा की शुरुआत पहली आया। तबर्रा, शिर्क और मुशरिकीन से बेजारी, ये रूह हज, शिर्क और मुशरिकीन से बेजारी। और दूसरा तवल्ला, कि पूरा हज कैसे होगा। इमाम फरमाते इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलिह, मिन तमामिल हज लिकाउल इमाम, हज का हज कामिल कब होगा, जब इंसान इमाम को पहचान ले। हालात तो ऐसे नहीं थे, हकीकी मुफस्सर हकीकी इमाम अकेला था, तनहा था। 105 108 अफराद हैं जो शहीद होने वाले हैं। बड़ा ही गहराई से करबला को हमने समझना है। अफसोस के साथ इमाम ने जो ही करबला पहुंचे तो इमाम ने क्या कहा, इमाम ने कहा हा हुना मज़बहु अतफा लेना, ये वो जगह है जहां हमारे बच्चे ज़बह किए जाएंगे। हम सिर्फ एक ही नाम सुनते हैं जनाब अली असगर ज़बह हुए, नहीं, इमाम ने जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, बहुत सारे बच्चे ज़बह होंगे। इल्मे इमाम बोल रहा है, हम एक ही बच्चे का के हवाले से बात करते हैं। बड़ी गहराई है करबला, करबला को गहराई से समझो, जिस तरह इमाम ने कहा है हा हुना मज़बहु अतफाल ना, अतफाल जमा है, तिफिल तो नहीं, तिफिल वाहिद है। हाँ, ये बच्चों के ज़बह होने की जगह है। इस एतबार से गिने तो 72 से ऊपर मामला चला जाएगा। इमाम चाहते थे कि चार शहर चार इलाके रोशन हो जाएं, मदीना मक्का कूफा शाम। कूफे और शाम में जिम्मेदारी किसकी है, कूफे और शाम में ज़ैनब सलाम अलैहा और इमाम सज्जाद की जिम्मेदारी है कि वो मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहुँचाएँ। इमाम जान गए थे कि जाहिलियत जो दीनी लिबादे में है, अब अगर मैं खुतबा दूंगा, अब मैं जो मदरसा कायम करूंगा, अब मैं जो शागिर्द तैयार करूंगा, वो किसी काम के नहीं। कोई शागिर्द मेरा बनेगा ही नहीं, कोई मेरा दर्द सुनने नहीं आएगा, कोई खुतबा सुनने नहीं आएगा। करबला की तासीर, करबला का नतीजा इमाम जाफर सादिक के दौर में देख लें आप। ये करबला की तासीर है कि 4000 अहले सुन्नत के शागिर्द इमाम जाफर सादिक के, 4000 लोग जो हैं शागिर्द हैं इमाम अहले सुन्नत के, इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। और बहुत सारे लोग इमाम तक पहुंच नहीं पाए थे, रास्ते में मर गए थे। अहले सुन्नत की अभी मैं बात करूँ, ये करबला के नताइज हैं, करबला के असरात हैं। बस ये اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل। बस करबला एक मौजज़ा है, एक मौजज़ा है जिसकी भरपूर तैयारी की गई। इमाम जो समझाना चाहते थे कि दीन असीर हो चुका है, दीन असीर है, दीन असारत की तरफ गया है, कुरान असीर है, कुरान जंजीरों में जकड़ा हुआ है, इमामत जंजीरों में जकड़ी हुई है, ऐसे को खलीफा माना जा रहा है, ऐसे को इमाम माना जा रहा है जो कुरान का हकीकी मुफस्सर नहीं, शराबखोर है, ऐलानिया तौर पे नाफरमानी करता है, ऐलानिया तौर पे शराब पीता और शराब के नशे में आके मिंबर पे आके कहता क्या है कि बनू हाशिम ने ढोंग रचा, नबूवत और रसालत का ढोंग रचा, ना ही कोई वही नाजल हुई, ना ही कोई फरिश्ता नाजल हुआ, ना ही कोई कुरान है। यहाँ तक मसाइल थे, यहाँ तक बस ये ज़रूरी था कि इमाम पाकीज़ा खून बहाएं, ऐसे लोगों को आमादा करें, तभी आप देखें कि आयतुल्ला जवादी आमली फरमाते हैं कि इमाम ने अहल बैत पे 40 साल पहले काम करना शुरू किया था कि करबला के लिए आमादा करें, और गैर अहल बैत के लिए 20 साल पहले काम करना शुरू किया था इमाम। अपने अहल बैत के लिए 40 साल पहले, आप जब जनाब अब्बास का तस्करा सुनते हैं, जनाब अब्बास पैदा हुए तो कैसे आमादगी कराई गई, क्या कहा गया, किस पे शहीद होना है, किस पे कुर्बान होना है, आप जब जॉन जॉन एक गुलाम के बारे में सुनते हैं, जॉन गुलाम 20 साल पहले जुड़ा है अहलबैत अलैहिस्सलाम से, और वो कुर्बान कहाँ हो रहा है? करबला में। बस इमाम ने दाखली तौर पे 40 साल पहले तैयारी करना शुरू की है और खारजी लिहाज से 20 साल पहले तैयारी करना शुरू की। चार शहरों को, चार आबादियों को, चार इलाकों को रोशन करना था। आप जो सुनते हैं कि कुरान नेजे पे तिलावत किया इमाम ने, ये कुरान सुना किसने? हर एक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान को सुन सके, हर एक के पास इतनी कुव्वत नहीं थी। ये खास लोग थे जो देख रहे थे, ये खास लोग थे जो ज़ैनब सलाम अलैहा हो या इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो या इमाम के साथी हो, ये खास लोग कुरान को सुन रहे थे और ये समझ रहे थे, ये इमाम का पैगाम था कि तुमने अपना तारुफ भी कुरान के जरिए कराना है। तभी आप सुनते हैं कि शाम के बाजार से जब गुजर रहे हैं, एक बूढ़ा शामी आ रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नजदीक, कहा कि तुम बागी गिरोह हो, कहा कुरान पढ़ते हो? कहा हाँ मैं कुरान पढ़ता हूँ। आयत खुम्स याद है तुम्हें? कहा कि हाँ मुझे आयत खुम्स याद है। ज़िल कुरबा उसमें पढ़ा है? कहा ज़िल कुरबा पढ़ा है। कहा ज़िल कुरबा कौन है? कहा नहीं मालूम। कहा वो हम हैं। आयत मवद्दत पढ़ी है तुमने? कहा हाँ पढ़ी है। कहा इस मवद्दत फिल कुरबा से कौन मुराद है? कहा वो हम हैं। आयत ततहीर तुमने पढ़ी है? कहा पढ़ी है। अहल बैत से मुराद कौन है? कहा हम हैं। वो शामी शख्स कहा कहता हुआ गया कि हमने धोखा खाया, हमने धोखा खा लिया, हम धोखे का शिकार हुए हैं। बस इमाम ने एक प्रोग्रामिंग की है कि जाहिलियत को अगर मिटाना है तो खून देना है, और हमारे बच्चे हमारी औरतें असीर बन के जाएं और असीर बन के जाएं, कहीं मायूस ना हो, कहीं किसी जगह पे मायूस ना हो। जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे में पहुंचा है, एक कासिद खबर देने गया है यजीद को कि हम जीत गए, तो क्या कहा कि खबर खुशी की दे रहे हो, तेरे चेहरे के तासुरात गम के हैं, क्या क्या माजरा है? कहा कि क्या करें, ये जो काफिला आया है कूफे में ये इतना मजबूत है, हमने बड़ी कोशिश की कि मायूस हो जाए, हमारे सामने झुक जाए, लेकिन झुक नहीं रहा। क्या तकलीफें देखी होंगी ज़ैनब सलाम अलैहा ने, लेकिन इमाम फरमाते हैं कि कहीं ताकत नहीं थी जिस्म में तो बैठ के भी नमाज शब को अदा कर रही थी। बस इमाम ने कह दिया था कि तीरों की बरसात हो, बच्चे गुम हो, तुमने नमाज शब को रिहा नहीं करना। यह मकसद इमाम हुसैन था कि चार आबादियां अगर रोशन हो जाएं, ये जाहिलियत जो खतरनाक तरीन जाहिलियत है, इसके लिए खुतबों की जरूरत नहीं है, इसके लिए मदरसों की जरूरत नहीं है, इसके लिए पाकीजा खून चाहिए, पाकीजा अफराद चाहिए, ऐसे अफराद जो पूरी तरह पाकीज़ा हो, लिखा अल्लाह के शौकीन हो। आखिरी किताब जो मक्के में है उसमें इमाम ने कहा मन कान बाज़िलन फीना, कुरान क्या, हम शक्ले कुरान है ना इमाम हुसैन, कुरान क्या कहता है? वल्लज़ीना जाहदू फीना, जो हमारी राहों में जिहाद करे। इमाम हुसैन भी क्या कह रहा है? जो हमारी राह में कुर्बान होना चाहे। यानी सबीलुल्लाह कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सिराते मुस्तकीम कौन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मन कान बाज़िलन फीना ना कहा, मन कान बाज़िलन, और ज़ियारते अरबईन क्या कहती है? ए खुदा तेरी राह में इमाम ने कुर्बान हुए। बस इमाम जब खुदा की राह में कुर्बान हो, वो खुद सबीलुल्लाह हैं, वो खुद सबीलुल्लाह हैं। बस इमाम ने एक प्लानिंग की, मजबूत प्लानिंग, ऐसे किसी शख्स को शामिल नहीं किया। उबैदुल्लाह इब्ने हुरजोफी की मिसाल सुन लें आप। उबैदुल्लाह इब्ने हुरजोफी इमाम गए इनके पास, ये कूफे से निकल के एक खेमे में, आप अभी इस वक्त जिसे कहते हैं न्यूट्रल, न किसी का नहीं, वो कह रहा था कि ना मैं इमाम हुसैन का साथ दूंगा ना यजीद का साथ दूंगा। कूफे से बाहर एक खेमा लगा लिया कि मैं दोनों से बच जाऊं। इमाम खुद गए हैं उनको पैगाम देने के लिए। इमाम ने जब पैगाम दिया तो कहा कि मैं आपके यहां शामिल नहीं होऊंगा, तौबा मैं नहीं करूंगा, तौबा मैं नहीं करूंगा। ना मैं तौबा करूंगा ना मैं आपके गिरोह में शामिल होऊंगा। आपका साथ देता हूं तो दुनिया मेरी खतरे में पड़ जाती, उनका साथ देता हूं तब भी दुनिया मेरे खतरे में, हाँ आखिरत मेरी खसारे में। बस आके उस शख्स ने कहा कि आप अगर जा रहे हैं लड़ने, लड़ना ही है आपने, मेरा मशवरा है कि आप ना लड़ें, अगर लड़ना ही है तो आप मेरा घोड़ा ले लें और तलवार ले लें, आप मेरा घोड़ा और तलवार ले लें। इमाम ने सूरह कहफ की आयत पढ़ी, वो सूरह कहफ की आयत जो खुदा कह रहा है, खलीफतुल्लाह मुस्तखलिफुन अनहु की बात करता है, खुदा की बात करता है। खुदा ने कहा है कि हमने इस जहां को, ये जहां एक कारखाना है, इस कारखाने में किसी गुमराह को नहीं लगाया। मा कुंतु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अल-मुज़िल्लीना अज़ुदा, हमने किसी गुमराह को बाजू नहीं बनाया, खुदा के कारखाने में कोई गुमराह नहीं है। जन्नत के फरिश्ते कभी गुनाह करते हैं क्या? जहन्नम के फरिश्ते कभी ऐसा सुना हो कि वो अजाब ज्यादा दे दें, जितना खुदा ने मुअय्यन किया उससे ज्यादा दे दें? नहीं, खुदा के कारखाने में हर कोई, जो भी खुदा ने जिससे लगाया है वो मासूम, खुदा के हुक्म के तहत है, खुदा का लश्कर है। वलिल्लाह जुनूदुस समावात वल अर्ज। इसी तरह इमाम ने उबैदुल्लाह इब्ने हुरजोफी को कहा कि मैं अपने कारखाने में, अपनी तहरीक में, अपनी नहजत में गुमराहों की एक तलवार और एक घोड़े को भी शामिल नहीं करूंगा। मा कुंत मुत्तखिज़ल अल-मुज़िल्लीना अज़ुदा, मैं नहीं बनाऊंगा बाजू। पूरी लिल्लाहियत थी, पूरा खुदा के लिए था, सारा जो शरायत थी कि जाहिलियत जो दीनी लिबादे में, उसको मिटाने के लिए पाकीज़ा लोग चाहिए, लिखा अल्लाह के शौकीन चाहिए, वही इमाम ने तैयार किए, वही दिखाया, खुद भी अमल किया। अपने बेटे के लाशे पे जाते हैं, आगोश में लेते हैं और उनको चूमते हैं। जनाबे जॉन के लाशे पे जाते हैं, आगोश में लेते हैं और उनको भी चूमते हैं। ये ऐसे इमाम थे जो इस्लाम को आलमी बना रहे थे, कुरान ने भी इस्लाम को आलमी बनाया। जाहिलियत दीनी लिबादे में थी और इस दीनी लिबादे में जाहिलियत को मिटाने के लिए पाकीज़ा लोग चाहिए थे। हम अभी बता रहे हैं कि जाहिलियत दीनी लिबादे में कैसे थी, ज्यादा मिसालें देंगे ताकि आपको मामला समझ आए। पहले रसूल खुदा की अहादीस पर पाबंदी थी बयान करना, रसूल खुदा की अहादीस को बयान करने पे पाबंदी। कुरान के हकीकी मुफस्सिर से मुआशरा दूर था। अव्वल रसूल खुदा की अहादीस रोशन थी, यानी रसूल खुदा की रहलत के बाद 150 साल बाद अहादीस पे पाबंदी खत्म हुई, आप अंदाजा लगाएं, वो भी आइमा की कोशिशों से। 150 साल का अरसा लगा है। बस अहादीस पर भी पाबंदी, हकीकी मुफस्सर से भी मुआशरा दूर, हकीकी मुफस्सर से भी मुआशरा दूर। जनाबे जहरा सलाम अलैहा ने अपने खुतबे में इस जाहिलियत की तरफ इशारा दिया। जनाबे जहरा ने क्या कहा? जनाबे जहरा ने अपने खुतबे फदक में ये जुमले इरशाद फरमाए, सूरह माईदा की आयत नंबर 50 की तिलावत की, अफा हुक्मुल जाहिलियत यबगून, क्या वो हुक्म जाहिलियत को तलाश कर रहे हैं, क्या वो जाहिलियत के हुक्म को तलाश कर रहे हैं, खुदा के हुक्म से बेहतर कौन सा हुक्म है अगर ये कौम यकीन वाली है। खतरे की तरफ इशारा किसने किया? जनाब जहरा ने भी किया, कुरान करीम ने भी किया, सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, अफा इम्मात, अगर ये रसूल मर जाए या कत्ल हो जाए तुम अपनी पहली वाली हालत पे लौट आओगे। इमाम अली ने भी किया, इमाम अली ने जनाबे मालिक अश्तर को कहा, ए मालिक ये दीन असीर हो चुका है, ये कुरान असीर हो चुका है, ये इमामत असीर हो चुकी है शरीर लोगों के हाथों में, आओ मेरे साथी बनो ताकि इसे आज़ाद कराएं। इमाम अली ने भी, इमाम हसन ने भी इशारे दिए कि कहा गया कि आप हक में शाम से क्यों नहीं लड़ते, कहा कि अगर हक में शाम से लड़ूं, ये लोग इतने इमामत से ना आशना हो चुके हैं कि ये लोग मुझे कैदी करके हक में शाम को कैदी के तौर पे देंगे ताकि हक में शाम मुझे कत्ल कर दे। दीन असीर हो रहा था, बस दीन असीर हो चुका था, जिस खतरे का एहसास कुरान ने भी दिलाया है, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने भी दिलाया। गौर से सुनिएगा, कुरान करीम के नाजिल होने से पहले जाहिलियत अरब की जहालत का अंदाज़ा लगाएं कि जब कहत पड़ता था, खुशसाली होती थी, तो जाहिल अरब अपने बच्चों को भूखा मारते थे, नहीं खिलाते थे कि ख़त्म ना हो जाए खाना, ख़त्म ना हो जाए अनाज, ख़त्म ना हो जाए, कुत्तों को खिलाते थे और कहते थे कि कुत्ते हमारी ज़मीन की, हमारे जानवरों की हिफाजत करते हैं, ये बच्चे छोटे हैं, शीरख्वार हैं, ये तो हमसे लेते हैं। कुरान करीम ने आके इस जाहिलियत को ख़त्म किया। कुरान करीम ने कहा वला तक्तुलु औलादकुम खशियत इमलाक, ना कत्ल करो अपनी औलाद को इस वजह से कि रिज्क की कमी है, खुदा तुम्हें भी रिज्क देता है, उन्हें भी रिज्क दे। रसूल खुदा ने उन्हें आलिम बनाया, रसूल खुदा ने उन्हें जहालत से निकाला और वो औलाद को अहमियत देने लगे। क्या हो गया था करबला में कि जनाब अली असगर पे से शोभा तीर चलाया गया, जबा किया गया, वो मकतब कैसे निकला उनके अंदर। कल हम मुनज्जम तौर पे इंशाल्लाह बयान करेंगे कि कैसे निकला इनके अंदर से मकतब। बस ये मकतब कैसे निकला, जाहिलियत किस लिबादे में आ गई, दीनी लिबादे में आ गई। हज कर रहे थे लेकिन शिर्क और मुशरिक से बेजारी के बगैर, लिकाए इमाम के बगैर। नमाज पढ़ रहे थे लेकिन नमाज उनकी दोस्त नहीं थी कि बुराई और फाशा से बचाए उन्हें। बस इमाम जाहिलियत को मिटाने के लिए पाकीज़ा नफ्सों को लाए कि पाकीज़ा नफ्स क्या हों, अपना खून दें। ये पूरी एक प्रोग्रामिंग की देखा है इमाम ने कि मुनाफिक लोग हकीकी मोमिन कहलाने लगे हैं, झूठे उलमा हकीकी उलमा कहलाने लगे हैं, झूठे उलमा फतवा दे रहे हैं कि हुसैन को कत्ल करना वाजिब है। हालात ये थे। बस अबू रेहान बेरूनी ने भी कहा कि हक में शाम का कारोबार ये था। ये कारोबार क्यों था कल हम बयान करेंगे इंशाल्लाह। ये कारोबार क्यों था, ये क्यों बुतों को बेचने का कारोबार उसने किया, वजह क्या थी कि शाम के इलाके को चुना गया, वजह क्या थी। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए ताकि करबला हमें, नहजत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें समझ आए। बस एक खलीफे की जिम्मेदारी तौहीद को आम करना है। बस इमाम ने भी, हर एक ने इशारे दिए और तन्हाई, हकीकी इमाम से लोग कितने दूर थे, जाहिलियत दीन के लिबादे में कितनी आ चुकी थी। मिसाल में दूंगा, आपको मालूम है इमाम जानते थे कि मेरे दर्स से, मेरी तकरीर से, मेरे हौजे कायम करने से तब्दीली नहीं आनी। आपको पता है कि मदीने से लेके कूफे तक, या कूफे की राह तक, करबला से पहले तक, थोड़ा करबला से पहले, इमाम हुसैन से कितने फिकही सवालात हुए? दो। इमाम से दो फिकही सवालात हुए हैं। ये खुद अंदाजा लगाएं कि इमाम हकीकी से लोग कितने दूर थे। दो इमाम से सवाल हुए फिकी, एक सवाल कूफे की राह में जब इमाम कूफे की जानिब जा रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्ने हुरजूफी का, जो हमने जिक्र किया, उबैदुल्लाह इब्ने हुरजूफी ने सवाल किया कि इमाम आपने खिजाब क्यों किया है, ताकि मैं जल्दी बूढ़ा हो चुका हूं, इस वजह से जंग के लिए निकला हूं तो मैंने खिजाब कर लिया। ये इमाम का जवाब, फिकी सवाल एक। दूसरा फिकी सवाल मक्के में हुआ, मक्के में जो सवाल हुआ वो सवाल किया नाफे इबन अजरक ने। नाफे इबन अजरक उस मजलिस में आया जिस मजलिस में इमाम हुसैन और अब्दुल्ला इबन अब्बास मौजूद। नाफे इबन अजरक ने सवाल अब्दुल्ला इबन अब्बास से किया, अब्दुल्ला इबन अब्बास से सवाल किया और अब्दुल्ला इबन अब्बास ने इमाम हुसैन को कहा कि आप जवाब दें। जब इमाम जवाब देने लगे तो ये बेअदब नाफे इबन अजरक ने कहा आप कौन हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हैं, आलिम तो ये हैं, आलिम तो अब्दुल्ला इबन अब्बास हैं, शागिर्द आलिम कहला रहे थे, उस्ताद माजल्ला। हालात ये थे। अब यहां सूरत हाल ही पाकीजा खून देने की है। जाहिलियत को जो दीनी लिबादे में है उसकी बड़ी मिसाल आप देख लें। करबला के बाद जब फुर्सत तलब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने देखा कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फ़ायदा उठाया जाए, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फ़ायदा उठाने के लिए उसने किया क्या, उसने क्याम कर दिया बनू उमैया के खिलाफ और मक्के की हुकूमत हासिल कर ली। मक्के की हुकूमत जब हासिल की तो हाकिम शाम यजीद ने कहा कि लोग मक्के की तरफ ना जाओ, हज करने ना जाओ, किबले को बदल दो, किबला बैतुल मक़दस बना दो, उसकी तरफ चले जाओ, उसकी तरफ हज करके आओ। लोगों ने कहा क्यों, हम ये करबला की पहली तासीर थी कि इस बात को नहीं माना गया और लोग दोबारा मक्के की तरफ गए हज करने के लिए, लेकिन इन लईनों ने मक्के पे ही हमला कर दिया, काबे पे ही हमला कर दिया, काबे पे ही संगबारी की गई। बस ये जहन में रखिएगा, करबला की तासीर नहजत इमाम हुसैन की तासीर, खून इमाम हुसैन की तासीर आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में आपको नजर आएगी। आप अगर सहीफ़ सज्जादिया को पढ़ें तो सहीफ़ सज्जादिया दुआओं की किताब ना मानिएगा कि ये दुआओं की किताब है, सहीफ़ सज्जादिया खुतबों की किताब है। जो खुतबे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं वो इमाम ज़ैन अलाबदीन ने दुआओं की सूरत में बयान किए हैं, वो दुआओं की सूरत में बयान किए हैं। जो खुतबा इमाम ने दरबार शाम में दिया है वही दुआओं की सूरत में इमाम ने बयान किया। ए खुदा वंदे आलम, लानत कर उन हाकिमों पर जो लायक नहीं हुकूमत के और नमाज जुमा को बर्पा कर रहे हैं। ये क्या है, ये पूरा करबला है, ये दुआ है इमाम सज्जाद की जो मैं पढ़ रहा हूं। ए खुदा लानत कर ऐसे हाकिमों पर जो लायक नहीं हुकूमत के और नमाज जुमा को बर्पा कर रहे हैं, उन्होंने हमारे हक को गसब किया हुआ है। खुतबा है या दुआ है, दुआ की सूरत में खुतबा। बस जाहिलियत को मिटाने के लिए इमाम ने अपना खून पेश किया। बस जाहिलियत के ज़माने में हज शिर्क आलूदा था, हज शिर्क आलूदा था। रसूल खुदा से पहले, बेसत से पहले हज के गिर्द, हज जो काबे के गिर्द जो तवाफ़ किया जाता था उस काबे में बुत पड़े होते। इमाम ने देखा कि अब बुत बदल गए हैं, बुत दुनिया परस्ती आ गई है, दीन से दूरी आ गई है, हकीकी इमाम से दूरी आ गई है, कुरान से दूरी आ गई, अब वो ज़ाहरी बुत नहीं रहे, मानवी बुत बनाए गए हैं इनके अंदर, मानवी बुत इनके अंदर बनाए गए हैं। बस हाकिम शाम ने तीन नमाज जुमा पढ़ाई, तीन नमाज जुमा पढ़ाई और रसूल खुदा का नाम तक नहीं लिया, रसूल खुदा का नाम नहीं लिया। और लोगों ने एतराज़ किया कि कैसे हो सकता है कि आप रसूल खुदा की रिसालत की गवाही ना दें। कहा असल में मैं गवाही दूंगा तो बनू हाशिम खुश हो जाएंगे। वो जाहिलियत वाली वाले दलाइल, जाहिलियत वाले दलाइल देना शुरू कर दिए। तीन जुमों में رسول خدا کی رسالت کی گواہی نہیں دی، رسول خدا کی رسالت، رسول خدا کا نام نہیں لیا، جو ہی مؤذن اذان دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، یہ حاکم شام کہتا کہ اگر ہم نے اس کو ختم کر دیا تو ہم حکومت کر پائیں گے، اور شام کے دربار میں امام سجاد نے یہی کہا کہ مؤذن نماز کا وقت آنے دو، مؤذن کو اذان دینے دو، اقامت کہنے دو، کہنے دو اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے بعد ہم تم سے سوال کریں گے، ہم جیتے ہیں یا تم، محمد تمہارے نانا ہیں یا ہمارے نانا ہیں؟ بس امام ایک پوری پروگرامنگ کے ساتھ چلے، یہ پوری پروگرامنگ تھی امام کی، یہ تین چیزیں، شان نزول کربلا، فضائے نزول کہ حاکم دین کو اسیر کرنے والا ہے، اور حقیقی مفسر قرآن اور دین کو آزاد کرنے والے کون ہیں؟ آل بیت نبوت، مادن الرسالہ، مختلف الملائکہ، اور جوے نزول کہ ہم نے چار اگر علاقوں کو روشن کر دیا، مقصد امام حسین علیہ السلام پہنچ جائے گا، اگر امام نے پاکیزہ خون دیا تو راستے میں جتنے خطبے دیے ہیں، جتنی تقریریں کی ہیں، جتنے خطوط لکھے ہیں، ان کا فائدہ ہوگا، اگر خون نہیں دیا، پاکیزہ خون نہیں بایا، پھر اس کے بعد خطبوں کی اور تقریروں کا فائدہ نہیں ہوگا، شہید ہوں گے امام حسین، اور اس کے بعد لوگوں کو احساس ہوگا کہ واقعی نواس رسول نے یہ کہا تھا، پوری ایک پروگرامنگ، پوری پروگرامنگ تھی، اور اس پروگرامنگ نے ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، ہر ایک نے اپنا حتی الامکان حصہ ڈالا، یہ عاشقان خدا بن چکے تھے، یہ عاشق امام بن چکے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہزار دفعہ مرنے کے لیے تیار ہیں، ہزار کلام عرب میں ہزار یعنی لا تعداد، یہاں امام سے جو اصحاب فرما رہے ہیں وہ لا تعداد، بشیر ابن عمر حضرمی، روز عاشور خبر آئی کہ آپ کا بیٹا اسیر ہو چکا ہے، امام نے کہا چلے جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ، کہا کہ امام میں دعا کروں گا کہ اگر آپ سے جدا ہو جاؤں تو بیابان کے درندے مجھے چیر پھاڑ لیں، آپ سے جدائی یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی، آپ سے جدائی ناممکنات میں سے، امام حتیٰ کہ میرا بیٹا بھی، کیونکہ حقیقی والد کون ہیں؟ حقیقی والد آپ ہیں امام، آپ کو تنہا کر دوں تو میں کہاں جاؤں گا، وہ جو بیٹا طبی بیٹا ہے وہ میرے کام نہیں آئے گا، ایسی فوج، ایسی ٹیم تیار کی، جو ٹیم پوری طرح تیار تھی، زینب سلام علیہا کا کردار دیکھ لیں، اپنے بیٹے شہید ہوئے روتی نہیں ہے زینب سلام علیہا کہ امام میرے کمزور نہ ہوں، اور جب خبر آتی ہے جناب علی اکبر کی شہادت کی تو سب سے پہلے جناب علی اکبر کے لاشے پہ پہنچنے والی زینب سلام علیہا کہ میرے امام کمزور نہ ہوں، کیسے ساتھی تھے، کیسی ٹیم تھی، سب سے پہلے پہنچنے والی کون ہے؟ زینب سلام علیہا، کہ میرے بھائی کمزور، میرے امام کمزور نہ ہوں، ایسی ٹیم ہو کہ سعید ابن عبداللہ نے 13 تیر کھا کے نماز کو برپا کروایا، اور کہتے کیا جا رہے ہیں 1200 فرسک کا سفر طے کر کے آئے تھے سعید ابن عبداللہ، وہ اس وقت ایسا بیابان تھا کہ کوئی زندہ واپس نہیں آتا تھا، 1200 فرسک کا جو ہے راستہ طے کر کے پہنچے، اور 13 تیر کھا کے کہتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے آپ عہد وفا کر دیا، عہد کو پورا کر دیا، امام کب، کیوں نہیں، عہد کو پورا کر دیا، بس آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ کربلا خونی گدیر، ایک پانی والی گدیر تھی، پانی والی گدیر میں رسول خدا نے امام علی کے ہاتھ کو بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی، اور خونی گدیر میں تلہ زینب یہاں پہ جب دیکھا زینب سلام علیہا نے کہ لعین امام کے سینے پہ سوار ہو گیا اور امام کو ذبح کرنے لگا، اس کے بعد कभी मुखातब होती हैं इमाम अली से, कभी मुखातब होती हैं जनाब ज़हरा सलाम अलैहा से, कभी लईन उमर इब्ने सअद से मुखातब होती हैं और कहती हैं तुम में से कोई मुसलमान नहीं, और आखिर में मुखातब होती हैं रसूल खुदा से। और ये खिताब ये वो वाला नहीं कि हम जिस तरह पुकारते हैं, ये वो खिताब है मलकूती खिताब के सामने जैसे मौजूद हो, ये मलकूती खिताब है रसूल खुदा सामने, ये वो हस्ती है जो मासूमा है, ये हमारी तरह खिताब नहीं कर रही। क्या फरमा रही, वाह मुहम्मदा, ए मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मली कसमा, आसमान के फरिश्ते आप पे दुरूद भेजते हैं। हाजा हुसैन उन मुरम्मल उन बिद्दमा, ये हुसैन है जो खूनी गदीर में डूबा हुआ है, ये हुसैन है जो खूनी गदीर में डूबा हुआ है, इसके आज़ा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। आपका अमामा पहन के निकला था बताने के लिए उम्मत के लिए कि मैं हकीकी जानशीन हूँ रसूल खुदा का, आज वो अमामा लूट लिया गया है उनसे। आपकी अबा पहन के निकला था ताकि उम्मत को बताए कि मैं हकीकी जानशीन हूँ रसूल खुदा का, लेकिन अबा को भी उतार दिया गया है। बस गोया ऐलान कर रही हैं, मन कुंत मौला हो फहाजा हुसैन उन मौला। बस खुदा वंदे आलम हमें तौफीक दे कि हमें ये करबला समझ आए, ये शान नज़ूल, ये जव नज़ूल, ये फ़ज़ा नज़ूल हम पूरी तरह समझें, और तौफीक दे कि हम आगे भी मुंतकिल करें, और खुदा वंदे आलम तौफीक दे कि हम हकीकी आज़ादार बने। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन अहले बैतिह तय्यिबीन अत्ताहिरीन। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا وحتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد